आप सुन रहे हैं लाल पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह है भाग 10। लेखन और आवाज दीपक मिर्तवाल। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि व्लॉगर रणबीर के वीडियो से कुलदीप अंदाजा लगाता है कि 20 साल पहले उसके भाई विशु के साथ क्या हुआ होगा। जल्द ही उसे यकीन हो जाता है कि उसके भाई की दिमागी हालत बिगड़ने और उसके पिता की गुमशुदगी के मामले में लाल चांद का कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा, इसलिए वो अपने गांव जाने का फैसला कर लेता है। सुबह का वक्त है, कुलदीप अपनी एसयूवी में अपने गांव की ओर जा रहा है। ऐसे तो उसका गांव शहर से कोई 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज कुलदीप 40 किलोमीटर का नहीं बल्कि 20 सालों का फासला नापने जा रहा था। असल में 20 साल पहले की उस रात को जो कुछ हुआ उसने कुलदीप के परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। उसकी मां ने अपने पति के खोने का गम सहकर भी बेटे का काफी इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाए। बेचारी मां ने दुनिया के बताए बाबा तांत्रिक टोने टोटके सब करके देख लिए, लेकिन विशु पहले वाला विशु नहीं रहा और कुलदीप भी तो पहले वाला कुलदीप नहीं रहा था। होश संभालने पर कुलदीप ने भी विशु को कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि अगर समय रहते विशु का ढंग से इलाज होता तो शायद उसके ठीक होने की उम्मीद होती। कुलदीप ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उसे अंधविश्वासों से ढकोसलों से नफरत सी हो गई थी। अब कुलदीप चमत्कारों की जगह विज्ञान में ज्यादा यकीन करता था, लेकिन अब जो कुछ घट रहा था उसने उसके विश्वासों को फिर से हिलाकर रख दिया था। कुलदीप पूरे रास्ते सोच रहा था कि लाल चांद के पीछे क्या वजह हो सकती है। लाल रंग के मंगल ग्रह से लेकर आसमान में दिखने वाले अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ तक के बारे में उसने सोच लिया था, लेकिन इनमें से कोई चीज उसे इन घट रही घटनाओं से मैच होती दिखाई नहीं दे रही थी। कुलदीप इंटरनेट पर बिखरी पड़ी उन कहानियों के बारे में भी सोच रहा था जिनमें एलियन स्पेसशिप या उड़न तश्तरी लोगों को गायब कर लेती है। हॉलीवुड का तो पसंदीदा टॉपिक है ये, लेकिन इस बात पर यकीन करने का उसके पास कोई कारण नहीं था, क्योंकि आज के वक्त में किसी रडार या सैटेलाइट से छिपकर इस तरह की घटना का होना आसान नहीं है। इस बार कुलदीप लंबे अरसे के बाद अपने गांव जा रहा था। हाईवे के दोनों तरफ काफी घना जंगल है। वैसे जो जंगल जितना घना होता है उतनी ही घनी उससे जुड़ी कहानियां भी होती हैं। इन्हीं कुछ कहानियों में डूबता उबरता कुलदीप थोड़ी देर बाद अपने गांव पहुंच चुका था। 20 सालों में गांव जरूर बदल चुका है, लेकिन गांव के एक कोने में बसा कुलदीप का मकान आज भी वैसा ही है जैसा बरसों पहले हुआ करता था। शायद वक्त और परिस्थितियों का इस मकान पर कोई असर पड़ा ही नहीं। असल में कुलदीप ने कई बार मां से अपने साथ शहर चलने के लिए कहा था, लेकिन मां गांव छोड़ने को राजी नहीं थी। कुलदीप घर के बाहर से ही अपने घर को निहारने लगता है। शायद पिछली रात के बाद से उसका चीजों को देखने का नजरिया बदल गया था। वो घर में अंदर जाता है, लेकिन उसे मां दिखाई नहीं देती। सुबह का वक्त है, शायद मां मंदिर गई होंगी। यही सोचता हुआ वो घर के पीछे वाले हिस्से में जाता है जहां बड़े से कमरे में कुर्सी पर बैठा विशु खिड़की से बाहर देख रहा है। आज विशु काफी शांत दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले साल कुलदीप ने विशु को दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में नामी डॉक्टरों को दिखाया था। उसके बाद से उसकी हालत में सुधार होने लगा था। कुलदीप विशु के पास जाने ही वाला था कि बाहर से मां की आवाज सुनकर वो मां के पास चला जाता है। मां कुलदीप को देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसे इस तरह बिना बताए आए देख हैरान भी होती है। कुलदीप मां को अपने गांव आने का असल कारण नहीं बताता। मां आगे बताती है कि वो उसे फोन करने ही वाली थी, क्योंकि विशु की हालत में पिछले 15 दिनों से काफी सुधार आया है और पिछले 3 दिनों से तो विशु बिल्कुल ठीक सा हो गया है। ये सुनकर कुलदीप को भी अच्छा लगता है, लेकिन उसे थोड़ी हैरानी भी होती है। साथ ही मां की अगली बात सुनकर वो चौंक जाता है, क्योंकि मां उसे बताती है कि पिछले महीने भर से विशु ने डॉक्टर की दवाएं लेना बंद कर दिया था, इसके बाद भी आज वो एकदम ठीक है। मां तो ये भी कह रही थी कि शायद डॉक्टरी दवाइयों की वजह से ही उसका विशु ठीक नहीं हो पा रहा था। कुलदीप मां को तो कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके दिमाग में तुरंत लाल चांद वाली बात आती है। वो सोचता है कि कहीं इस सब का भी तो लाल चांद से कोई कनेक्शन तो नहीं। लेकिन तभी दूसरा ख्याल ये भी आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के डॉक्टरों के इलाज ने असर दिखाया हो और वाकई में विशु अब ठीक हो गया हो। यही सोचता हुआ वो मां के साथ विशु के कमरे में आता है। विशु खिड़की के पास कुछ पक्षियों को दाना डाल रहा है। मां उसे आवाज देती है, विशु। विशु उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। वो भी कुलदीप को देखकर खुश होता है। अरे कुलदीप, कब आया? विशु को इस तरह बात करता देख खुशी के मारे कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस अभी थोड़ी देर पहले आया। दोनों भाई गले लग जाते हैं। कुलदीप विशु के साथ काफी देर तक बातें करता है। 20 साल के बाद उन लोगों ने इस तरह तसल्ली से बातें की है। बात करके कुलदीप को लग ही नहीं रहा था कि विशु के साथ कभी इस तरह की कोई दिमागी बीमारी रही होगी। अब कुलदीप को भी यकीन हो गया था कि विशु पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यहां तक कि कुछ देर के लिए तो कुलदीप भी भूल गया था कि वो यहां क्यों आया था। असल में हर किसी की एक दिली ख्वाहिश होती है जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। विशु का ठीक होना कुलदीप की वही ख्वाहिश थी। कुलदीप की खुशी का ठिकाना नहीं था। बरसों बाद इस घर में उसे सुकून महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि एक फिल्म को 20 साल पहले पॉज कर दिया गया हो और आज वापस से किसी ने प्ले बटन दबा दिया हो। तीनों काफी देर से ऐसे ही बातें कर रहे थे। अब तक दोपहर भी हो चुकी थी। कुलदीप के पास आदित्य का फोन आता है। शायद आदित्य के फोन से ही कुलदीप को याद आता है कि वो यहां किस सिलसिले में आया था। कुलदीप फोन पर बात करने के लिए बाहर आ जाता है। कॉल रिसीव करते ही आदित्य बोलता है, बॉस सुबह से कितनी बार ट्राई किया आपका फोन, अब जाकर लगा है। आदित्य की आवाज से कुलदीप को समझ आ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो पूछता है, क्या वो आदित्य, सब ठीक तो है ना? आदित्य जवाब देता है, बॉस रात से एक और लड़का गायब है। कुलदीप हताशा जाहिर करता है। उधर से आदित्य आगे कहता है, प्रेशर काफी बढ़ गया है, एसपी साहब से बात कर लेना, सुबह से आपका फोन ही नहीं लग रहा। कुलदीप जवाब देता है, हाँ इधर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं बात करता हूँ एसपी साहब से। कुलदीप कॉल काटता है और सोच में पड़ जाता है कि वो एसपी साहब से क्या बात करे। उसकी निगाह सामने जाती है जहां विशु और माँ दोनों बात करते हुए बाहर आ गए हैं। कुलदीप सोच रहा है कि वो इतनी दूर अपने भाई से लाल चांद के बारे में पूछने आया है, लेकिन क्या अब भाई से वापस उस रात के बारे में बात करना सही होगा? 20 साल से विशु और पूरा परिवार परेशानी झेल रहा है, लेकिन अब जब विशु फिर से ठीक हो गया है तो क्या फिर से उस सबका जिक्र करना चाहिए या नहीं? कुलदीप समझ नहीं पा रहा था। एक ओर उसका दिमाग कह रहा था कि उसका भाई डॉक्टरी इलाज के बाद ठीक हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसके दिमाग में ज्यादा डरावनी बात आ रही है कि 20 साल बाद फिर से लाल चांद दिखना शुरू हुआ और इसी के साथ उसका भाई भी ठीक हो गया। उसके दिमाग में आता है कि अगर लाल चांद के दिखने और उसके भाई की दिमागी हालत ठीक होने में कोई रिलेशन है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या विशु का दिमाग किसी चीज से प्रभावित हो रहा है? क्या किसी चीज ने उसके दिमाग पर कब्जा कर रखा था या अभी भी कर रखा है? कुलदीप के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वो काफी सारी बुरी संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी उसे ध्यान आता है कि सामने खड़ा विशु उसे इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। अपने विचारों की बाड़ पर लगाम लगाकर वो विशु के पास जाने लगता है। जाते जाते कुलदीप ये डिसाइड कर लेता है कि वो किसी तरह विशु से उस रात के बारे में पूछेगा। कुलदीप विशु के पास पहुंचता है। दोनों घर के पीछे वाले हिस्से में खड़े हैं। यहां से कुछ दूर जंगल शुरू हो जाता है। दोनों बात करते करते वहां से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। आज विशु को देख कोई कह भी नहीं सकता कि यह इंसान पिछले 20 सालों से पागल रहा होगा, बल्कि वो एक सभ्य शालीन इंसान नजर आ रहा था। कुलदीप कहता है, विशु याद है बचपन में हम दोनों यहां कितना खेला करते थे? विशु चारों ओर देखकर कहता है, क्या दिन थे वो, तू, मैं और पापा। पापा की बात आते ही कुलदीप एक बार उसके चेहरे की तरफ देखता है, लेकिन विशु ने बड़ी सहजता से यह बात कह दी थी। कुलदीप उसे टटोलने की कोशिश करता है, पापा के साथ हम कितना दूर तक चले जाया करते थे, बड़ा मजा आता था ना। विशु जवाब देता है, हाँ हमारे पापा दुनिया के बेस्ट पापा थे। कुलदीप आगे अपनी बात कहने से पहले थोड़ा ठिठकता है, उसकी हिचकिचाहट उसकी आवाज से भी झलक रही है। विशु एक बात बताएगा? हाँ बोलना कुलदीप। कुलदीप अटकते अटकते अपनी बात कहता है, विशु तुझे पता है उस रात को पापा के साथ क्या हुआ था? कुलदीप अपनी बात भी सही तरह से नहीं कह पाया था, लेकिन विशु उतनी ही सहजता के साथ जवाब देता है, किस रात? विशु कुलदीप के चेहरे की तरफ देखता है, कुलदीप उसे देखकर नजरें झुका लेता है। असल में उसे इस बात का भी डर है कि कहीं उस रात के जिक्र से विशु की हालत पर कुछ गलत असर ना पड़े, इसलिए वो उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता। लेकिन कुलदीप की आशंका के विपरीत विशु एक समझदार इंसान की तरह बिहेव करते हुए कहता है, वो रात जब पापा गायब हुए? कुलदीप चुप है। कुछ देर दोनों की चुप्पी के बाद विशु बताना शुरू करता है, अब ज्यादा तो ध्यान नहीं, लेकिन उस रोज कुछ हुआ था, तू तो मुझसे भी छोटा था। पापा पिछली कुछ रातों से रोज कहीं जा रहे थे, हमने पापा से कहा कि पापा हमें भी रात को जंगल देखना है, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया था, और फिर वो जंगल में चले गए थे। विशु चुप हो जाता है, उसकी आवाज में निराशा जरूर थी, लेकिन वो एक सुलझे हुए इंसान की तरह बात कर रहा था। कुलदीप अभी उससे और जानना चाहता है, फिर थोड़ी देर तक विशु कोई जवाब नहीं देता, या शायद देना नहीं चाहता है, इसलिए कुलदीप दोबारा उसे कुरेदता है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, तू भी तो रात को बाहर गया था ना। विशु कुछ याद करने की कोशिश करते हुए जवाब देता है, हाँ तूने और मैंने, हम दोनों ने बात की थी कि माँ घर पर नहीं है, इसलिए कोई रुकेगा नहीं और हम दोनों पापा के पीछे जाएंगे, लेकिन उस रोज पापा अपने कमरे में कुछ काम कर रहे थे, शायद कुछ लिख रहे थे, बहुत रात हो गई थी, तू सो गया था लेकिन मैं जाग रहा था, मुझे ध्यान है कि पापा रोज अपना थैला लेकर जाते थे, उस रोज रात को भी वो थैला लेकर गए थे, लेकिन उस थैले में से मैंने दिन में कोई सामान निकाल लिया था, मैंने सोचा था कि ये सामान देने के बहाने मैं पापा के पीछे चला जाऊंगा। कुलदीप के लिए ये एकदम नई जानकारी थी, ये सुनकर उसके भी कान खड़े हो गए थे, वो पूछ बैठता है, थैला? कौन सा थैला? विशु यादों के पिटारे से ढूंढ ढूंढ कर अपनी बात पूरी कर रहा था, असल में थैले में एक डायरी थी और कुछ कागज और पता नहीं क्या क्या था, शायद एक कांच जैसी कोई चीज या पता नहीं क्या, पता नहीं पापा थैले के उन सामानों का क्या करते थे, लेकिन वो सामान उनके लिए बहुत काम का था। एक दो बार मैंने उन सामानों को देखने की कोशिश की तो पापा ने मेरे को डांटा भी था। विशु 20 साल पहले की यादों में खो गया था। कुलदीप आगे सुनने के लिए उसे टोकने ही वाला था कि विशु बोल पड़ा, मैंने देखा तू सो चुका था, इसलिए मैं अकेला ही बाहर निकल गया, लेकिन पापा काफी आगे निकल चुके थे, मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन फिर मुझे वो दिखाई नहीं दिए, मुझे डर लग रहा था, मैं जंगल में भटक चुका था, मैंने पापा को आवाज लगाई, 2-3 बार आवाज लगाई, पापा ने मुझे जवाब दिया, पापा ने कहा विशु इधर मत आना, वापस घर चला जा, मैंने कहा पापा मुझे रास्ता नहीं पता, पापा ने कहा तू जहां है वहीं रह, मैं आ रहा हूं, मैं वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, थोड़ी देर हुई लेकिन पापा नहीं आए,
मैंने पापा को फिर से आवाज दी, लेकिन पापा के चिल्लाने की आवाज आई। मैं डर गया, मैं भागकर उधर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं।
कुलदीप उसे वापस कुरेदता है। विशु कुछ तो याद होगा, क्या हुआ उसके आगे? विशु याद करने की कोशिश करता है लेकिन उससे कुछ ध्यान नहीं आता।
कुलदीप मुझे उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा।
कुलदीप इस बात पर गौर कर रहा था कि विशु एकदम सही तरह से जवाब दे रहा था। अभी तक के जवाबों से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक पागलपन का शिकार रहे शख्स से ये सारी बात सुन रहा था। आखिर में कुलदीप उससे पूछता है,
विशु जब लोगों ने तुझे देखा तो तू
आसमान की तरफ देखकर लाल लाल कह रहा था, क्या था वो? लेकिन विशु को कुछ भी याद नहीं था। आखिर में कुलदीप उससे सीधे सीधे पूछ लेता है, विशु तू लाल चांद के बारे में जानता है क्या? विशु हैरत से पूछता है, क्या? कुलदीप कहता है,
लाल चांद मतलब लाल रंग का चांद।
विशु जवाब देता है, पागल हो गया है क्या, चांद भी कोई लाल रंग का होता है? कुलदीप इस जवाब से हैरान रह जाता है, लेकिन वो आखिरी कोशिश करता है,
तू आसमान में चांद की तरफ देखकर लाल लाल कह रहा था, कि तुझे भी लाल चांद तो दिखाई नहीं दिया था।
अब विशु एकदम चुप हो जाता है, वो शून्य में देखे जा रहा है। कुलदीप उसे झकझोरता है और कहता है, विशु विशु विशु। लेकिन कुछ ही सेकंड में विशु पहले वाला विशु नहीं रह गया है। वो चारों तरफ डर भरी निगाहों से देखने लग जाता है। वो वापस से पहले की तरह पागलों जैसी हरकत शुरू कर देता है और कहता है,
लाल लाल लाल।
उसे जोर का दौरा पड़ता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। कुलदीप उसे आवाज देता है, विशु। आप सुन रहे थे लाल पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 10, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल।